बीबीसी इंडिया बोल तारीख 12 अगस्त दिन शनिवार। मैं हूं वात्सल्य राय। कभी तीन तलाक तो कभी बीफ खाने की बात, कभी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर बहस। विवादों के शोर में मुसलमानों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पिछड़ेपन के मुद्दे क्यों गुम हो जाते हैं? सवाल है कि देश में मुसलमानों की बेहतरी के असल मुद्दे क्या हैं? आज यही है चर्चा का विषय। क्या सोचते हैं आप? कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर अख्तरुल वासे। लेकिन चर्चा के पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 30 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। इस मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि अस्पताल में गैस की सप्लाई कुछ समय के लिए बाधित जरूर हुई थी, लेकिन बच्चों की मौत इस वजह से नहीं हुई। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। म्यांमार में सेना के अधिकारियों का कहना है कि राखीने से कई हत्याओं की खबरें मिलने के बाद वहां पर सैकड़ों सैनिक तैनात किए जा रहे हैं। बीते सप्ताह कथित तौर पर 500 सैनिकों को सिटवे पहुंचाया गया था। इन सैनिकों को मंगुदो शहर के नज़दीक पहाड़ी इलाकों में भेजा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने सेना की तैनाती पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से अपील की है कि वो सुरक्षा बलों से संयम बनाए रखने के लिए कहें। बीते साल अक्टूबर में राखीने में विद्रोहियों ने पुलिस नाकों पर हमले किए थे, जिसके बाद पुलिस ने विद्रोहियों को पकड़ना शुरू किया था। इस हिंसा के कारण हजारों अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों को इलाके छोड़कर भागना पड़ा था। मंगलवार को संपन्न हुए विवादित राष्ट्रपति चुनावों के बाद कीनिया के गृह मंत्री फ्रेड माटिंगी ने देश के नागरिकों से अपने सामान्य जीवन में वापस लौटाने की अपील की है। इससे पहले चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा जीत गए थे। गृहमंत्री ने कहा है कि अधिकतर इलाकों में अब शांति लौट आई है, लेकिन कुछ इलाकों से हिंसा की खबरें अभी भी आ रही हैं और इसके लिए अपराधी जिम्मेदार हैं। बताया जा रहा है कि विपक्षी उम्मीदवार राइला ओडिंगा का समर्थन करने वाले इलाकों में पुलिस ने 3 लोगों को मार दिया है। देश के पश्चिम में मौजूद शहर किसिमू में विरोध करने वाले एक व्यक्ति ne कहा,
We never voted for Uhuru. No Kenyan voted for Uhuru. And if Uhuru insists to be the president, he will rule only Gatundu.
हमने कभी उहुरु केन्याटा के लिए वोट नहीं किया। किसी केन्याई नागरिक ने उनके लिए वोट नहीं किया। अगर वो फिर भी राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं तो वो बस अपने गृह राज्य गाटुंडू पर ही शासन करेंगे। सभी लोग उहुरु और उनके शासन को स्वीकार नहीं करते। अगर वो फिर भी ऐसा करेंगे तो हमें उनको दिखाना होगा कि इधर असली सिपाही हैं और हम लड़ना जारी रखेंगे। ये थे कीनिया में किसुमू शहर में उहुरु केन्याटा का विरोध करने वाले एक व्यक्ति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पादरिनो ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किए जाने को पागलपन भरा कदम बताया है। पादरिनो ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमरीका का शासन एक संभ्रांत वर्ग के अतिवादी व्यक्ति के हाथों में है, जो उनके खिलाफ और उनके खिलाफ वेनेजुएला के सभी नागरिक खड़े होंगे। वेनेजुएला के संचार मंत्री अर्नेस्टो विलिएगा ने ट्रंप की टिप्पणियों को अभूतपूर्व धमकी कहा है और कहा है कि ये बताता है कि अमेरिका खुद इस मुद्दे पर बंटा हुआ है।
Insisto, es la más grave amenaza jamás proferida contra la soberanía, la independencia de la patria de
मैं फिर से कहता हूं कि ये वेनेजुएला गणराज्य की संप्रभुता और स्वतंत्रता के खिलाफ सबसे गंभीर खतरा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय से आई तत्काल प्रतिक्रिया, या जिसे सुधार कहें, उसमें कहा गया है कि स्थिति के बारे में उन्हें अभी ट्रंप से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। ये बताता है कि अमरीकी सरकार में अभी भी स्थिति को लेकर अलग अलग विचार हैं। ये थे वेनेजुएला के संचार मंत्री अर्नेस्टो विलिएगा के शब्द। दुनिया की सबसे बड़ी निजी पनडुब्बी तैयार करने वाले डेनमार्क के एक आविष्कारक पीटर मेडसन को कोपेनहेगन में एक अदालत में पेश किया गया है। उन पर पोत पर उनके साथ यात्रा कर रही स्वीडन की एक पत्रकार की हत्या का आरोप लगाया गया था। 46 साल के पीटर मेडसन ने 30 साल की महिला किम वॉल की हत्या के आरोपों से इनकार किया है। किम वॉल गुरुवार से ही लापता हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी इंडिया बोल रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव। आज चर्चा का विषय है कि देश में मुसलमानों की बेहतरी के असल मुद्दे क्या हैं। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं, 1811-7000 और 1811-7001। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जोधपुर की मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अख्तरुल वासे। वासे साहब, स्वागत है आपका और तमाम श्रोताओं का भी स्वागत है जो हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
बीबीसी इंडिया बोल।
मैं मुसलमानों को पूछता था कि आपको हिंदुओं को लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है?
जब असुरक्षा की भावना पैदा कर दी जाती है आपके मन में, तो आप पहले अपने को सुरक्षित होने की बात करते हैं।
कुछ हद तक उन्होंने पहले जो एजुकेशन लेवल था कम, वो काफी कुछ इम्प्रूव हुआ है उनकी रोजगारी।
अगर मुस्लिम शिक्षित होंगे तो वो अपनी तकदीर खुद अपने हाथों लिख लेंगे।
हम आपको बता दें कि साल 2011 में जनगणना के जो आंकड़े सामने आए थे उनके मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ थी। इनमें मुसलमानों की आबादी 17.22 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 14.23% थी। इन आंकड़ों के जारी होने के दो साल पहले साल 2009 में बीबीसी उर्दू के हमारे साथी सुहेल हलीम साहब ने एक ब्लॉग लिखा। वक्त चुनाव का था और मुद्दा था मुसलमानों को क्या चाहिए। उन्होंने लिखा, सालों पहले मेरे बुजुर्ग कहते थे कि मैंने भारतीय मुसलमान को कभी कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज मांगते हुए नहीं देखा। ना ही वो अपने इलाके में अस्पताल के लिए आंदोलन चलाते हैं और ना ही बिजली पानी के लिए। वो जानवरों तक का अस्पताल नहीं मांगते। उन्हें चाहिए तो बस एक चीज़, लाउड स्पीकर पर मस्जिद से अजान देने की इजाज़त, जिस पर अक्सर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहरों में पाबंदी लगा दी जाती थी। वो आगे लिखते हैं कि मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर यह बात अब भी सच है, चाहे लाउड स्पीकर अब मुद्दा ना हो। वो भारत में तथाकथित सेक्युलर पार्टियों को वोट देते हैं, सुरक्षा के नाम पर उनके हाथों में ब्लैकमेल होते हैं। ऐसा क्यों है कि इसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए? सुहेल साहब ने यह ब्लॉग 8 साल पहले लिखा था। उसके बाद से एक आम चुनाव और हो चुका है और उसे भी 3 साल बीत गए हैं। और अगर मुसलमानों की बात हो तो चर्चा में जो मुद्दे दिखाई देते हैं वो कमोबेश वही हैं। लाउड स्पीकर की बात भी आती है, सुरक्षा का मुद्दा भी उठता है, यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने पर बहस होती है और अब डिबेट 3 तलाक पर भी हो रही है। लेकिन क्या यही असल मुद्दे हैं? हम प्रोफेसर वासे का रुख करेंगे, लेकिन पहले एक श्रोता का रुख जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? लगता है संपर्क कट गया है, हम वासे साहब के पास आते हैं। वासे साहब, ये जो मुद्दा है हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या है असल मुद्दा?
नहीं देखिए, असल जो मुद्दा है वो तो शिक्षा और आर्थिक विकास ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आर्थिक रूप से हम संपन्न होंगे और शैक्षिक रूप से हम पूरी तरह से, जिसे कहना चाहिए कि अपने को मजबूत कर लेंगे, तो फिर हमारी समस्याएं जो हैं उनका समाधान खुद हो जाएगा।
जी जी वासे साहब, लोकतंत्र में कई बार मुद्दे राजनीतिक जमीन पर तय होते हैं। जैसा कि आपने कहा शिक्षा, तो सरकार के सरोकार की बात करें तो मौजूदा केंद्र सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्लिम समुदाय की शिक्षा पर जोर देने की बात करते हैं। मैं सुनवाना चाहूंगा कि 2 साल पहले किताब जारी करने के वक्त उन्होंने क्या कहा था, सुनिए नरेंद्र मोदी को।
800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। ये जो बातें आज हम कर रहे हैं वो कोई नई नहीं है। अगर हम इन बातों को याद कर लें तो कोई नए रास्ते खोजने की जरूरत भी नहीं है। 1920 में महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ को प्रारंभ किया, तो उसका जो लोगो बना है उस लोगो में एक अरेबिक घोष वाक्य भी है। उसमें लिखा है, अल हिकमतो जालतुल मोमिनो फहैसो वजदहा अहको बेहा। इसका मतलब होता है ज्ञान मुसलमानों की खोई हुई चीज है, वो जहां से भी मिले उसको पाना ये मुसलमान का हक है।
वासे साहब, जो बात आप कह रहे हैं वही बात मुझे सुनाई दी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने ये कहा था, समानता है बातों में, क्या कहेंगे?
नहीं देखिए, ऐसा है कि जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा वो बिल्कुल सच्ची बात है और जो सच बात है उसका खंडन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात को कहना और सरकार के मुखिया के रूप में उस चीज को पूरी तरह से जमीनी सच्चाई में बदलने के लिए प्रयास करना और प्रोत्साहित करना दूसरी बात है। एक तरफ तो ये प्रधानमंत्री ने बड़ी सही बात कही, लेकिन दूसरी तरफ अली उन्हीं की सरकार के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसे एफिडेविट क्या वो दाखिल करना चाहते हैं जिसमें कहते हैं कि अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है वो अल्पसंख्यक एक संस्थाएं नहीं है
जी।
मामला ये है कि आप ऐसी नई संस्थाएं खोले और उनको एक तरह से मुसलमानों को शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाएं, ये करने की जरूरत है, ना कि जो संस्थाएं मुसलमानों ने ऐतिहासिक रूप से बनाई उनको एक तरह से उनका जो स्वरूप है उसको बदलने के प्रयास आपकी सरकार कर।
यानी वासे साहब आप कह रहे हैं कि संस्थाओं का जो मूल स्वरूप है उन्हें बचाना चाहिए, नई संस्थाएं बनानी चाहिए जिससे मुसलमानों को ज्यादा बेहतर शिक्षा मिले। मैं आपके पास लौटूंगा, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सीधे रुक करना चाहेंगे उनका। जी क्या नाम है आपका?
जी राहुल कुमार झा।
जी राहुल कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
बेतिया बिहार से।
जी क्या कहेंगे राहुल जी?
मेरे कहने का आशय ये है कि आज जो प्रॉब्लम है मुस्लिम समाज में, उसके लिए उन्हीं लोगों को आगे आना होगा सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जमीनी स्तर से शिक्षा में विकास करना होगा ताकि अभी जो विज्ञान जहां तक गया है उससे मैच करके वो आगे बढ़ सके।
यानी आप कहना चाहते हैं कि उनको खुद कोशिश करनी पड़ेगी और आगे आना पड़ेगा। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका?
हेलो।
जी जी बताएं, नाम बताएं अपना।
जी मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है, दुल्हन तक भोजपुर बिहार से बोल रहा हूँ।
जी नीतीश कुमार जी, क्या कहेंगे आप?
जी हम ये कहेंगे कि उनके ही प्रतिनिधियों को खुद ये मामला उठाना होगा, क्योंकि उनका कोई भी प्रतिनिधि अभी तक इस मामले को उठा नहीं पाया है।
यानी कि कोई भी प्रतिनिधि आप कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे को उठा नहीं पाया है, उनकी बेहतरी की बात नहीं कर रहा है।
पैसे की बात करेंगे या फिर अपने बिहार में ये जो है बिहार के हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता, इन्होंने कहा शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि मामलों को कभी उठाया नहीं है।
जी आपका कहना आप कहना चाहते हैं कि जन प्रतिनिधि इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं, इसलिए असल बात सामने नहीं आ पाती है। विकास की बात आ रही है और इसके साथ एक बड़ी बात सुरक्षा की भी आती है। कांग्रेस का आरोप है कि सुरक्षा जब तक नहीं मिलेगी तब तक विकास की बात नहीं हो सकती। मैंने कांग्रेस के नेता शकील अहमद से बात की और उनसे पूछा कि मुसलमानों की बेहतरी के असल मुद्दे क्या हैं, तो उनका क्या कहना था? ये भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं तो हम सुनवाना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं।
देखिए, इस देश के अन्य समाज की तरह जो मुस्लिम समाज है इस देश का, उसको भी जरूरत है रोजगार की, तरक्की की, जो देश की उन्नति और प्रगति हो रही है उसमें, और ऐसा नहीं है कि उनको इसका हिस्सा नहीं मिला है, इसका हक नहीं मिला है। लेकिन एक असुरक्षा का बोध इधर कुछ दिनों से कराया जा रहा है। कोई भी विकास, कोई भी तरक्की बिना अमन और शांति के नहीं हो सकती, और आपको जब असुरक्षा की भावना पैदा कर दी जाती है आपके मन में, तो आप पहले अपने को सुरक्षित होने की बात करते हैं। आप तरक्की में जो देश के आपका हिस्सा होना चाहिए, जो आपकी भागीदारी होनी चाहिए, उस पर आपका ध्यान नहीं रहता है।
यानी आपकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सुरक्षा, बाकी मुद्दे बाद में।
हाँ सही है, जब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा तब तक वो तरक्की का प्रयास नहीं करेगा। कोई तरक्की विकास घर किसी के तो पहुंचाता नहीं है। आपको इंडिविजुअल रूप से, सामूहिक रूप से तरक्की हासिल करने के लिए, अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए प्रयास करना पड़ता है। पहले जीवन बचाने का सवाल किसी के भी मन में आता है, उसके बाद जीवन में तरक्की की बात आती है। तो असुरक्षा की भावना इस सरकार ने पैदा कर दी है, और ये एक सोची समझी स्कीम है। इसके फायदे होते हैं सरकार को, जो उनका फेल्योर है रोजगार के मामले में, विकास के मामले में, करप्शन के मामले में, लोगों की मदद करने के मामले में, जो तो ये जो बहस होती है आजकल वो ज्यादातर इस मुद्दे पर होती है कि किसी तरह जमात सरकार के फेलियर से भटा रहे और लोग दूसरे मुद्दों पर भटके रहे, हमारे फेलियर्स पर ध्यान नहीं दे।
ये थे शकील अहमद। सुरक्षा का मुद्दा कई बार अहम लगता है, खासतौर पर जब दादरी के अखलाक, मेवात के पहलू खान और बल्लभगढ़ के जुनैद हाफिज के नाम सामने आते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो नजरिया है, भारतीय जनता पार्टी का नजरिया उससे अलग है। कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन क्या कहते हैं, जरा सुनिए।
इस देश में जितना सुरक्षित मुसलमान आज है उतना कभी नहीं था। हर साल दंगे फसाद की भेंट चढ़ जाता, सैकड़ों में लोग साल भर में मारे जाते थे। आज कहीं दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, अमन अमान है, शांति है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबके विकास की सरकार चल रही है। एक बहुत बड़ा प्रोपेगंडा है न किसी सरकार बल्कि भारत के खिलाफ कि यहाँ पर माइनॉरिटीज सुरक्षित नहीं है, जबकि 4 या 5 घटना हुई होगी दुनिया में। ऐसी 2 बड़ी आबादी हिंदू और मुसलमान मिलके कहीं रहते नहीं, इसकी कोई मिसाल नहीं है। पहले भी अवार्ड वापसी के जरिए ये दुष्प्रचार किया गया, अभी भी दुष्प्रचार किया गया है। हम शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान लाया तो आज बच्चों को खाना मिलने लगा, पढ़ाई में इम्प्रूव हुआ, तो आज मुस्लिम बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं। आज UPSC का एग्जाम हुआ, 50 से ज्यादा बच्चे इस बार कम्पीट हुए जितना कभी नहीं हुए थे। हम बराबरी देना चाहते हैं, लोग यहाँ चर्चा दूसरी करना चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नजर में असल मुद्दे आपको क्या नजर आते हैं, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय?
असल मुद्दा शिक्षा है। अगर जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें कह रहे थे कि भारत का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, लेकिन अगर वो एजुकेटेड नहीं होगा, अगर मुसलमान 3% ग्रेजुएट होंगे तो वो 5% IAS कैसे हो पाएंगे। इसलिए हमारी सरकार मुसलमानों के शिक्षा पर ध्यान दे रही है। हम चाहते हैं कि सबको शिक्षा मिले, उसके साथ मुस्लिम कम्युनिटी में भी शिक्षा की कोई कमी ना हो। अगर मुस्लिम शिक्षित होंगे तो वो अपनी तकदीर खुद अपने हाथों लिख लेंगे।
वाजे साहब, आपने दोनों नेताओं को सुना। कांग्रेस के शकील साहब कहते हैं कि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाना चाहती है इसलिए असल मुद्दों की बात नहीं करती है। शहनवाज हुसैन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगंडा चल रहा है। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को?
देखिए, ऐसा है कि शकील साहब जो हैं, जो कुछ कह रहे थे उसके अंदर बड़ी सच्चाई है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 3 साल के अंदर ही सारी परेशानियां नहीं आई हैं, बल्कि उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही है तो जो समस्याएं हैं हम मुसलमानों की, शिक्षा के स्तर पर ही आप ले लीजिए, उसके लिए कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से या मैं अलग नहीं हो सकती है। उन्होंने क्या इस देश के अंदर मुसलमानों के मोहल्लों में स्कूल खोलने के बजाय थाने खोलने का काम किया, नतीजा ये हुआ कि मुसलमान शैक्षिक रूप से पिछड़ते चले गए। उन्हें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप की बात हो या इस तरह के जो भी मुद्दे हों, उसके लिए कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को बचा नहीं सकती है। उसी तरह दूसरी सच्चाई ये भी है कि मैं आप जो आपने बातें बताई और जो मतलब लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है सड़कों के ऊपर, हिंसात्मक प्रवृत्ति सामने आ रही है, एक विशेष वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि 1 हुई या 2 हुई या 3 हुई या 4 हुई, सवाल ये है कि एक भारतीय
जी
जो है उसको भी अगर जान से मारा गया उसके धार्मिक उसकी वजह से, तो बुनियादी तौर पे ये भारत माता के लिए एक तकलीफ की बात है और एक तरह से हमारी जो धर्मनिरपेक्ष लोकशाही है उसके लिए ये बड़ा खराब मामला है।
जी, बड़ा खराब मामला है आप ये कहना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि 70 साल से ये दिक्कत है, ये दिक्कत कोई आज की नहीं है। मैं कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका और आप क्या कहना चाहते हैं?
हेलो
जी, बताएं, नाम बताएं अपना।
सर मैं दिलावर हुसैन कादरी बोल रहा हूँ, जैसलमेर राजस्थान से।
जी बताइए कादरी साहब, क्या कहेंगे आप?
सर मैं अपनी बात का आगाज इन अल्फाज के साथ करना चाहता हूँ, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर।
जी
सर मेरा कहने का मतलब यह है, मुसलमान जो अपने अमाल की वजह से पिट रहा है, ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं पूरे वर्ल्ड की समस्या है।
जी तो आप कहना चाहते हैं कि पूरी पूरी दुनिया की यह समस्या है, और जहां
दुनिया की समस्या मुसलमान जिस मिशन के लिए, मुसलमान को रब ताला ने जिस मिशन के लिए जमीन पे भेजा था, उस मिशन से मुसलमान हट चुका है। हम चाहे किसी को दोष दें अपनी नाकामी छुपाने के लिए
जाएंगे।
हेलो
जी, क्या नाम है, नाम बताइए अपना और क्या कहना चाहते हैं कहीं?
मैं नाम मोहम्मद सिराज है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दे हैं मुसलमानों के मुद्दे, तो मैं ये बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दे सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं है, ये मुद्दे हिंदुओं के भी हैं। और मुद्दे मेन ये है कि लोगों को जॉब नहीं है, जिस हिसाब से हमारे देश में लोग शिक्षित हैं उस हिसाब से जॉब नहीं है, और बीजेपी सरकार के हमेशा ये एजेंडा रहा है लोगों को मुख्य मुद्दों से डिरेल करने के लिए, तीन तलाक, बहु विवाह, हलाला, ये और इन ऐसे सब भ्रामक,
यानी मुद्दों से भटकाने के लिए बात होती है। आप ये कहना चाहते हैं, शिक्षा की जब बात होती है, तरक्की की बात होती है, हर बार जिक्र सच्चर कमेटी का होता है, तो हम आपको बता दें कि साल 2005 में यूपीए सरकार ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर 403 पन्ने की एक रिपोर्ट दी थी। ये रिपोर्ट नवंबर 2006 में संसद में रखी गई। मैंने कुछ देर पहले जस्टिस सच्चर से भी बात की और उनसे भी पूछा कि उनकी नज़र में बेहतरी के मुद्दे दरअसल हैं क्या, सुनिए उनका क्या कहना है।
ये मुसलमान हिंदुस्तान का बशिंदा है, उतनी उसकी इज्जत, तकवीयत और उसकी पोजीशन है जितनी हिंदुस्तान में हिंदू या किसी की है। ही इज ए माइनॉरिटी इन द सेंस कि वो रिलीजन में माइनॉरिटी है। भाई रिसोल्यूशन जो आम के हैं एजुकेशन के, कुछ हद तक उन्होंने पहले जो एजुकेशन लेवल था कम, वो काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है। उनकी उनकी रोजगारी जो एक आदमी की होती है उनकी कोई ज्यादा नहीं, स्कीमें तो बहुत बनाई गवर्नमेंट ने, अब देखिए ना साहब ये तो काम गवर्नमेंट का है, हमने तो अपनी तरफ से सुझाव देने थे। कमेटी इज नॉट इन चार्ज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इक्वालिटी कमीशन समझते हैं कि वो हिंदुस्तान में फौरन बनना चाहिए, उसे एक बराबर का मौका मिलेगा लोगों को अपनी शिकायतों को ले जाने का।
थे जस्टिस सच्चर, और हमें सोशल मीडिया पर भी कई श्रोताओं के कमेंट मिल रहे हैं, उनमें से कुछ को मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। माशंकर झटवार कहते हैं कि इस वक्त मुस्लिम समुदाय को यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम उनसे नफरत नहीं करते। एहतेशाम आमिर की नज़र में बेहतरी के असल मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार हैं। आसिफ की नज़र में ये मुद्दे रोज़गार और शिक्षा हैं। पूजा कहती हैं बेहतर शिक्षा ही प्राथमिक और असल मुद्दा है। मैं एक बार फिर रुक करना चाहूँगा प्रोफेसर वासे का, एक मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा कि आप पूरा जो आपने चर्चा की, श्रोताओं के भी कमेंट आए, नेताओं को भी आपने सुना, आप क्या देखते हैं आगे का रास्ता? वासे आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क कट गया है। तो जिस तरह से हमने अभी तक चर्चा की और इस चर्चा में कुल मिलाकर बात यही निकलती हुई दिख रही है कि सभी, ज्यादातर हमारे श्रोता और हमारे गेस्ट वासे साहब का यही कहना था कि असल मुद्दे जो हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य हैं, लेकिन साथ में मुसलमानों की बेहतरी के बारे में भी सोचना होगा। इंडिया बोल में आज इतना ही। अब हम रुक करेंगे दिन की एक बड़ी खबर का, जो कि गोरखपुर से आ रही है। जो कल एक खबर आई थी गोरखपुर में, कल हमें जानकारी मिली कि गोरखपुर के एक अस्पताल में 30 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर आत्मज मिश्र जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करना चाहेंगे। समीर का, समीर से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। वासे साहब से एक बार फिर हमारी लाइन जुड़ गई है, मैं माफी चाहूंगा। मैं दोबारा वासे साहब एक आखिरी आपका कमेंट लेना चाह रहा था, आप क्या कहेंगे?
जी बताइए। मुझे ये कहना है कि मुसलमानों के मुद्दे एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुसलमान का जो हित है वो हिंदुस्तान के हित से अलग नहीं है, जो कुछ हिंदुस्तान के हित में है वो मुसलमान के हित में है, इसलिए मुसलमानों की सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं उनका निदान करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए सरकार को और समुदाय को उसमें पूरी तरह से आगे आके सरकार के साथ मिलकर खुद भी अपनी भूमिका को पूरी तरह से सक्रिय रूप से निभाना चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया वासे साहब, जो आपने कहा कि सरकार और समुदाय को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। समीर आत्मज मिश्र के पास हम लौटते हैं जिनसे हमारा संपर्क जुड़ गया है। समीर जी, हम जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में, क्या अपडेट है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिस तरह से 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, इस मामले में क्या अपडेट है आज का ताजा?
जी वासल, मैं आपको बताऊं कि अभी इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है एनएक्सी में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अभी जस्ट वो बता रहे हैं कि 10 अगस्त को 23 लोगों की मौत हुई और 11 अगस्त को 11 लोगों की, यानी उनके मुताबिक कुल 34 लोग बच्चों की अभी तक मौत हुई है। यहाँ पे मौत क्यों हुई है, इंसेफलाइटिस की वजह से हुई है, ऑक्सीजन जो उसकी जो कमी सप्लाई बाधित हुई उसकी वजह से हुई है, इस बारे में अभी कोई चीज नहीं है। सिद्धार्थनाथ सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आए थे और गोरखपुर में उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे आज भी मना कर दिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से मौत नहीं हुई है। बहरहाल मौत की वजह अभी भी उस पर सवाल उठ रहे हैं और चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस बीच जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का है उसके प्राचार्य प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है और अभी तक फिलहाल ये जो बड़ी कार्रवाई जिसको कहा जाता है वो अभी यही हुई है। ठीक, जो मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उससे ठीक पहले उन्होंने अपने कई मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की और उसके बाद वो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं।
जी, जो मुख्यमंत्री का दौरा है इसके पहले हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले पर सफाई दी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकी थी ये कहना है सरकार की तरफ से बार बार लगातार, प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन क्या कोई जांच कमेटी इसके लिए गठित की गई है, वो किस तरह का काम करेगी, कैसे बातें सामने आएंगी?
जांच कमेटी की गठन की अभी औपचारिक घोषणा इन्होंने नहीं की है, लेकिन जांच कमेटी निश्चित रूप से जो आदित्यनाथ योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हो सकता है कि उसमें वो इस तरह की कोई घोषणा करें और उसमें बताएं कि कौन जांच करेगा, किस तरह की वो जांच करवाएंगे और कितने सदस्यीय कमेटी करेगी। लेकिन अभी तक जो स्थिति है, और आज भी हम कई बार मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ अफरा तफरी और जो बीमार बच्चे हैं इंसेफ्लाइटिस को लेकर के अभी भी परेशान थे, और आज चूंकि मंत्रियों का दौरा था और उससे पहले कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया था और दूसरे दलों के प्रतिनिधिमंडल भी आए थे, तो पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज वैसे भी छावनी बना हुआ था। बाहर के एक दो डॉक्टरों से, कुछ विशेषज्ञों से जो इंसेफ्लाइटिस के हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उन्होंने एक चीज बताई कि इन दौरों की वजह से तमाम लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो बाहर से आते हैं और इंसेफ्लाइटिस के मरीजों को लेकर के, वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज न जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर भाग रहे थे।
जी,
तो एक तरफ तो हॉस्पिटल में इलाज को लेकर के दिक्कतें हो रही है, दूसरी ओर जो न जानते हुए लोग वहां लेकर के आ रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ देख करके वो हॉस्पिटल के अंदर घुस ही नहीं पाए,
दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। जी, इस बीच में ये जानकारी आ रही है, हमारी सहयोगी मानसी दास बता रही हैं, समीर आत्मज मिश्र। मैं अपने श्रोताओं को भी बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं पूरे मामले पर। मैं समीर जी संक्षेप में 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री वहां गए थे, दौरा किया था, उस समय कोई बात सामने नहीं आई थी, अचानक ये दिक्कत हुई है, इसको लेकर सरकार कोई सफाई दे पा रही है?
कोई सफाई नहीं दे पा रही है, और मुख्यमंत्री खुद ही जिस समय वो यहाँ के अधिकारियों से बात कर रहे थे, 23 मौतें तो उसी दिन हुई है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री उस दिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, और जो ऑक्सीजन सप्लाई जो अवरुद्ध होने की बात हुई है उसमें कहा गया कि जो कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई करती है उसका बकाया 60 लाख रुपया नहीं दिया गया था। आश्चर्य की बात वास्तव ये है कि उस मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ ले रहे थे उसमें इस बकाए के भुगतान जैसी कोई किसी समस्या का अधिकारियों ने जिक्र तक नहीं किया।
जी, बहुत शुक्रिया समीर जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, सुबह के कार्यक्रम में हम आपसे और ज्यादा विस्तृत अपडेट लेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम बीबीसी इंडिया बोल में हिस्सा लेने वाले सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाया उनसे हम माफी चाहेंगे। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी, तब तक सभी बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। फिलहाल वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।